ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सभी ने आज सुबह को अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली सुने, सुना है ना? आज की मुरली के अंदर बाबा ने हम सबको एक शब्द अंडरलाइन कराया, वो शब्द था रिटर्न जर्नी। इस शब्द को हम दो प्रकार से समझ सकते हैं। एक तो इतने सालों से, चाहे साकार द्वारा चाहे अव्यक्त द्वारा पालना लिया है, उसकी रिटर्न देना, और दूसरा रिटर्न जर्नी की तैयारी करना। इन दोनों बातों के लिए समय प्रति समय अव्यक्त बाप दादा अनेक इशारे दिए हैं, और हम सभी जानते हैं कि बाबा का हम सबसे कितना प्यार है।
अभी एक क्लास 3 लैंग्वेज में ट्रांसलेशन चल रहा है। कन्नड़ा की ट्रांसलेशन की फ्रीक्वेंसी 92 है, तेलुगु ट्रांसलेशन फ्रीक्वेंसी 90 है, और तमिल का ट्रांसलेशन फ्रीक्वेंसी 101 है। तो तमिल का नोट कर लीजिए, 101 फ्रीक्वेंसी है, कन्नड़ा की 92 फ्रीक्वेंसी है, और तेलुगु की 90। थैंक यू।
तो हम बता रहे थे कि हम सबका बाबा के साथ अति स्नेह है, और हम चाहते हैं कि इतनी बाबा से हमने पालना ली है, इतने साल सर्व संबंधों से व्यक्त या अव्यक्त, तो हम कुछ तो बाबा को रिटर्न देना चाहिए। वैसे देखा जाए तो हम इतने साधारण आत्माएं भगवान को क्या रिटर्न दे सकते? ऋण कैसे हम चुकाएंगे? अगर हम सारे कल्प के अंदर जो 84 जन्म हैं, अगर पूरा जन्म ही बाबा के लिए ले लेते हैं तो भी हम चुका नहीं सकते, क्योंकि बाबा ने हम सबके ऊपर इतनी कृपा किया है, इतने वरदानों से झोली भरी है, इतनी पालना किया है। फिर भी दिल ऐसा कहता है कि कुछ तो हम बाबा को रिटर्न में प्यार की निशानी के रूप से दे दे। आप सबके मन में आता है ऐसा, कुछ रिटर्न देना चाहिए? तो उसके लिए हम क्या करें? ये भी बहुत वंडरफुल बात है, रिटर्न देने के लिए क्या क्या करना है वो भी बाबा ने इशारा दे दिया है। ये बातें करो तो ये रिटर्न है बाबा के लिए। आज जो बाबा ने हमको समय प्रीत समय सुनाया है, उसका ही हम रिवाइज करते हैं 5 बातों में। बस ये 5 बातें अगर हम सभी इस वारी मधुबन से होमवर्क के रूप से ले जाए और इसको प्रैक्टिकल करें, तो हम कम से कम बाबा को कुछ तो हम रिटर्न दे सके। इसके लिए हम सब तैयार हैं पांच छह बातें करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात हमें क्या करना है, और कुछ बड़ी बात नहीं, सिर्फ अपने आप को टर्न करना है। रिटर्न देने के लिए अपने आप को टर्न करना है। इसका मतलब क्या हुआ? अपने कड़े संस्कार, अपना पुराना संस्कार, उसको परिवर्तन करना है। उसके लिए हमको वैराग्य वृत्ति को धारण करना है। अगर हम सभी ये थोड़ा सा टर्न कर देवे, यानी पुराने संस्कारों को रियलाइज करके उसका परिवर्तन हम कर ले, तो ये हमारा रिटर्न है। तो उसके लिए हमको क्या चाबी चाहिए? पुराने संस्कारों को टर्न करने के लिए कौन सी चाबी को यूज करना है? बेहद के वैराग्य वृत्ति। अभी देखिए, अपने देह के तरफ भी वैराग्य वृत्ति आ गई है, देह के संबंधियों के तरफ भी वैराग्य वृत्ति है, दैहिक पदार्थों के तरफ भी वैराग्य वृत्ति है, बाकी एक कोना बच गया है, वो है पुराना संस्कार। तो अगर हम अपने पुराने संस्कार की तरफ वैराग्य वृत्ति, दूसरी शब्दों में हम कह सकते हैं घृणा, तो हम उसको ऐसे निकाल देंगे जैसे कि वो हमारा था ही नहीं। जब संस्कार को बदलेंगे तो संसार बदलेगा। इसलिए बाबा ने कहा संसार क्यों रुका हुआ है? कारण हमने संस्कार को बदली नहीं किया है। तो हम सब मिलकर के इस वारी बाबा को हम ये रिटर्न दे कि हम अपने अपने पुराने संस्कार को रियलाइज करके, उसको टर्न करके, बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करते हुए हम अपने कम से कम बाबा की पालना का हम रिटर्न देंगे। ये सबसे पहली बात। और दूसरी बात, इस मुरली में ही, आज के मुरली में ही बताया है बाबा ने क्या करना है रिटर्न देने के लिए, और कुछ नहीं, फॉलो फादर, बस बाबा के कदम के ऊपर कदम, स्टेप बाय स्टेप बाबा को फॉलो करना है। अगर हम बाबा को कदम कदम फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली बाप समान बनेंगे। बाप समान बनना ही रिटर्न देना है। तो बाबा कहते हैं कि आपको कोई नया रास्ता नहीं बनाना है। बाबा जो जिस मार्ग पर चले वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। ये गलती ना करें कोई बहन भाई को फॉलो करना चालू कर दे। हाँ, भाई बहनों से अच्छा गुण उठाओ, हर एक से गुण उठाओ, पर किसी को फॉलो नहीं करो। फॉलो एक को करना है। तो जब हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो फादर करेंगे तो डेफिनेटली बाप समान बनेंगे। तो ये ही हमारा बाबा के लिए रिटर्न है। तो ये कर सकते हैं, करेंगे। और तीसरी बात, रिटर्न माना जितना हमने बाबा की पालना ली है उसकी पालना का रिटर्न हम क्या देंगे? हम सब आशा के दीपक बन जाए, बाबा के आशा के दीपक, यानी बाबा का हम सब के लिए क्या आशाएं हैं? वो आशाओं को हम, बाबा की आशाओं को हम पूर्ण करें। तो जब हम सब आशा के दीपक बन जाएंगे तो ये हमारा रिटर्न होगा, ये तीसरी बात। और चौथी बात बहुत सिंपल है। बाबा ने कुछ समय पहले मुरली में ये महावाक्य उच्चारण किया था कि जो भी आपने बाबा से प्रतिज्ञा किया है, समय प्रति समय प्रतिज्ञा करना बहुत सहज है, उसके लिए कोई मार्क्स नहीं मिलता है, परंतु प्रॉमिस को निभाएंगे उसके लिए मार्क्स मिलता है। तो रिटर्न देने का मतलब क्या है? निरंतर दृढ़ता के आधार से अभी तक जो भी हमने बाबा से प्रतिज्ञाएं की है उसको हम निभाए, तो यही हमारा रिटर्न है। इसलिए बार बार मुरलियों में बाबा याद दिलाते हैं, अभी नया प्रॉमिस नहीं करो, आपकी फाइल भर गया है सूक्ष्म वतन में, टू मच हो गया, अभी आपकी फाइल को फाइनल करो। तो मतलब कि जो प्रतिज्ञा किया है उसको निभाओ। जब हम प्रतिज्ञाओं को निभाएंगे तो हमारा आगे नंबर चला जाएगा। बाबा बार बार मुरलियों में कहते हैं ना, लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। वो किसके लिए गायन है? जो अभी अभी ज्ञान में आते हैं नए नए, तो वो भी बहुत आगे जा सकते हैं। सिर्फ हम परीक्षा के समय प्रतिज्ञा को भूल ना जाए, क्योंकि प्रतिज्ञा को भुलाने के लिए परीक्षा जरूर आएंगे, परंतु परीक्षा आते हुए भी देखो, परीक्षा आती है थोड़े समय के लिए, परंतु अगर उसी समय हम प्रतिज्ञा को भूल जाते हैं तो बाबा की प्रत्यक्षता नहीं कर सकते। तो इसलिए हम अपने को याद दिलावे, समय पर समय हमने बाबा से क्या क्या वायदा किया, उसमें कितना हमने निभाया है, तो आप बहुत समीप आ जाएंगे बाबा के। भले आप देरी से ज्ञान में आए, बहुत समीप आ सकते हो। ये चौथी बात है। आज ही मुरली में बाबा ने एक और युक्ति बताई है रिटर्न देने के लिए। बाबा ने कहा, ये नहीं समझो कि हम जब कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे तो शरीर छोड़ देंगे। नहीं, शरीर में रहते हुए हम कर्मातीत अवस्था का अनुभव कर सकते हैं। अभी हमने प्रैक्टिकली देखा, दादियों को देखा, दादाओं को देखा, बाबा को साकार में देखा कि कैसे वो कर्मातीत अवस्था को हमारे सामने ही प्राप्त कर लिया देखते देखते। तो यानी हम, बाबा ने जो मंत्र दिया है 18 जनवरी 1969 कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए, उस मंत्र का स्वरूप बन जाए। आप सबको याद होगा ही वो मंत्र, मनसा में निराकारी, वाचा में निर्विकारी, कर्मणा में निराहंकारी। ये कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का महामंत्र। तो बाबा ने इन तीनों की धारणा के आधार से ही अपना अंतिम स्थिति को प्राप्त किया, फरिश्ते बन गए। तो हम भी फॉलो फादर, मनसा निराकारी, यानी जितना हो सके आत्माभिमानी स्थिति में रहना। तो निराकारी जो होंगे वो वाचा में निर्विकारी जरूर होंगे और कर्म में निरहंकारी उनका प्रैक्टिकली दिखाई देगा। आज भी बाबा ने मुरली में कहा, जो निरहंकारी होते हैं उसके जीवन में दो लक्षण होते हैं, निमित्त निर्माण निर्मल वाणी। तो हमको बाबा को रिटर्न देने के लिए प्रकाशमणि दादी का भी यही मंत्र था कि निमित्त भाव, निर्माण और निर्मल वाणी, मीठी वाणी। तो अगर इतना भी हम धारणा कर ले तो बाबा हमारे से बहुत खुश होंगे। हमको सूक्ष्म वतन से सोने की फूलों की वरदानों की वर्षा करेंगे। तो पांच बातें कर सकते हैं ना, याद रहेगा। ये पहले तो हमको रिटर्न, क्योंकि हमको यहाँ रहते हुए भी, कल भी बाबा ने कहा इन आंखों से जो कुछ देखते हो, कुछ भी नहीं देखो क्योंकि सब कुछ जलने वाला है, मरे पड़े हैं, भस्म हुआ पड़ा है, तो आपकी बुद्धि जाएंगी नहीं। जैसे दीदी मनमोहिनी का ये तांत लगा हुआ था, अब घर जाना है, अब घर जाना है। तो हम सभी को भी ये तांत और लात रात दिन लगी रहे और कुछ नहीं, अब घर जाना है, अब घर जाना है। तो ऑटोमेटिकली हमारा लंगर, हमारी बुद्धि रूपी पांव इस पृथ्वी, शरीर रूपी पृथ्वी से उठ जाएगा। तो अभी रही रिटर्न जर्नी की तैयारी। दूसरों को कैसे मालूम कि अभी रिटर्न जर्नी का टाइम है? हर काम घड़ी को देख करके करते हैं ना आजकल लोग। अभी विश्व की घड़ी में क्या बजा है आपको पता है? 1.9 सेकेंड, 1 सेकेंड बाकी है 12 बजने में, 1 मिनट भी नहीं। तो डूम्स डे जल्दी आने वाला है। तो हमको तो चाहे ना चाहे घर तो जाना ही है, क्योंकि टाइम ही है वो वापस जाने का। नाटक पूरा हो रहा है, हम सभी फाइनल सीन में पहुंच गए हैं। उसकी निशानी क्या होगी? सब एक्टर्स स्टेज पर आके खड़े हो जाते हैं और पर्दा गिर जाता है, बस एंड ऑफ द ड्रामा। अभी वो टाइम जल्दी आने वाला है, इसलिए बाबा ने कल की मुरली में भी सडनली अचानक का शब्द को अंडरलाइन कराया। बाद में बाबा को कंप्लेन करने की जरूरत नहीं कि आपने हमको नहीं बताया। तो इसलिए अपने आप से पूछे कि हम अभी रिटर्न जर्नी, घर जाने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? किसी का भी कभी भी टर्न आ सकता है ना? तो सबसे पहली कौन सी निशानी होगी? तो हम तैयार हैं, रिटर्न जर्नी की निशानी क्या होगी? उनका चारों प्रकार से, तो चारों किनारा उठ गया होगा उनका लंगर, देह से, देह के संबंधियों से, देह के पदार्थों से, पुराने संस्कारों से बुद्धियोग उपराम। तो उपराम स्थिति अंडरलाइन करो, न्यारा सिर्फ नहीं, उपराम, एकदम उपराम। जैसे कि कहते हैं ना स्मशानी वैराग्य, जब भी मुर्दे को स्मशान में ले जाते तो लोगों को वैराग्य आता है, तो ऐसे हमको उपराम अवस्था चाहिए। देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, और कहां भी हमारी दिल अटके नहीं, चटके नहीं, लटके नहीं, एकदम फ्री। तो सबसे पहली तैयारी रिटर्न जर्नी के लिए, सिर्फ साक्षी अवस्था नहीं, वो तो चाहिए चाहिए, उससे भी ऊपर उपराम, ऊपर राम की स्मृति। उपराम का मतलब ऊपर का राम की स्मृति हमको बार बार आते रहे। तो लोगों को भी हमको देख करके लगेगा कि इनको यहां यहां रहने वाली यहां नहीं है, इनका लंगड़ पांव रूपी बुद्धि रूपी पांव यहां से उठ गया है। तो सबसे पहली बात ये, और दूसरी बात रिटर्न जर्नी, माना वापसी, रिटर्न घर जाने के लिए हमको क्या करना है। आप जब आए थे घर से क्या लेके आए थे, याद आता है? कुछ भी नहीं लेके आए, शरीर भी नहीं लेके आए, आत्मा खाली नंगे आए और वैसे ही जाना है। तो तैयारी क्या करना पड़ेगा रिटर्न के लिए, समेटना पड़ेगा। तो वर्तमान समय हम सब के जीवन में समेटने की शक्ति चाहिए। अभी विस्तार में जाने का टाइम नहीं है, समेटो। जैसे देखो इंडिया से अमेरिका जाने के लिए कोई तैयार होते हैं ना, माइग्रेट करते हैं, वो क्या करते हैं, भारत की सब कुछ, अपनी प्रॉपर्टी को समेटना चालू करते, क्योंकि अभी तो हम इस देश को छोड़ के अमेरिका जा रहे हैं। कुछ चीज बेच देते हैं, कुछ चीज ऐसे दान में दे देते हैं, कुछ ट्रांसफर कर देते हैं। तो हम सब को भी रिटर्न जर्नी के लिए समेटने की शक्ति को धारण करना है। सब समेटो, अभी विस्तार करने का समय नहीं है। इसका मतलब क्या, बाबा बार बार हमको याद दिलाते हैं, एक सेकेंड में फुल स्टॉप लगाओ। अभी ट्रैफिक कंट्रोल में हम अभ्यास करें, फुल स्टॉप, बिंदी, बस। मैं भी बिंदी, बाबा भी बिंदी, ड्रामा बिंदी, और कुछ याद ना आवे।
शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। पिता को अब याद करो, ये संगम का स्वर्णिम युग है, शिव पिता फिर से आया। अब आया है, विकराल विनाश खड़ा आगे सतयुग में अब तुम्हें आना है
धाम में तुम्हें
सतयुग में अब तुम्हें आना है
धाम में तुम्हें गाना है।
तो आप सबकी बिंदी लगी, फुल स्टॉप लगा या लगाने की कोशिश किया, फुल स्टॉप, कामा में चले गए, कोमा में चले गए या तो आश्चर्यचकित हो गए या तो टेढ़ा हो गया आपका फेस, क्वेश्चन मार्क, ऐसा तो नहीं हुआ ना? नहीं, बहुत समय से फुल स्टॉप। स्टॉप मीन्स स्टॉप। उसके लिए क्या विधि है? अपने पास सर्व शक्तियों की फुल स्टॉप चाहिए। जिसके पास सर्व शक्तियों की फुल स्टॉक है वो फुल स्टॉप सहज लगा सकते। और दूसरी बात, बाबा ने बहुत सहज एक फॉर्मूला बताया है फुल स्टॉप लगाने का। ये अपने को याद दिलाओ, अभी तक जो कुछ हुआ है बहुत अच्छा, अभी जो हो रहा है बहुत अच्छा, जो कल जो होने वाला है अच्छे से अच्छा, अच्छा ही अच्छा है तो फुल स्टॉप। और ये भी निश्चय रखो, संगम युग कल्याणकारी है, बाबा कल्याणकारी है, हमारी चढ़ती कला है, हमारे जीवन में अकल्याण हो नहीं सकता। तो फुल स्टॉप लगाने में देरी नहीं लगेगा। आप सब मानते हो बाप कल्याणकारी, संगम युग कल्याणकारी, तो हमारा जीवन में अकल्याण क्यों हो सकता है? हाँ, कभी कभी ऐसा कोई ना कोई परिस्थिति आती है हमको हिलाने, परंतु अकल्याण में भी कल्याण भरा हुआ होता है, क्योंकि अकल्याण तो हो ही नहीं सकता, पर अकल्याण में भी कल्याण भरा हुआ होता है। उसको देखने के लिए हमको तीन धारणा चाहिए। पहली धारणा अंतर्मुखता, बाहर मुखी नहीं बनो। जब भी अकल्याण बाहर दिखाई देता है पर अंदर उसमें कल्याण है, तो पहले अंतर्मुखी बनो। और दूसरा धीर्यता रखो, पेशेंस, इंट्रोवर्शन, फिर पेशेंस, धीर्य धरो, और तीसरा सहन शक्ति। तो अगर ये तीन बातों की हमारे जीवन में धारणा होंगी तो अकल्याण की परिस्थिति में भी कल्याण आपको दिखाई देगा। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, प्रैक्टिकल। बॉम्बे में एक भाई था, ये दादियों ने सुनाया है मिसाल, वो बिजनेसमैन था, तो बहुत बाबा के साकार में बहुत नजदीक थे। एक बारी मधुबन में आए थे, बाबा से मिलकर के बॉम्बे जा रहे थे, तो ट्रेन से उतरते उतरते गिर गए और पांव टूट गया, फ्रैक्चर हो गया। तो वो घर में जाकर के बाबा को टेलीफोन किया, बाबा ऐसा हो गया, हमारा फ्रैक्चर हो गया है। बाबा ने क्या कहा होगा, बहुत अच्छा। अगर आपको कोई कहे आपको गुस्सा आएगा? नहीं, बाबा ने उस आत्मा को कहा बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि वो आत्मा बिजनेसमैन था ना, वो सदी बाबा को बहाना देते थे, हमको टाइम नहीं है, हम बहुत बिजी हैं, बाबा को याद नहीं कर सकता हूं। तो अभी बाबा ने कहा, अभी तो आप बाबा को जितना याद करना चाहो उतना करो, अपने सारे पापों को भस्म कर दो। उसको बहुत खुशी हुई, उसको दुख नहीं हुआ, बाबा ने जब कहा बहुत अच्छा। तो इसलिए कभी कभी ऐसा कल्याण भरा हुआ होता है, अकल्याण में भी घबराना नहीं। तो ये इसलिए मैं सुना रही हूँ, समेटना है, छोटी बात को बड़ा नहीं करना है, राई को पहाड़ नहीं बनाना है, पहाड़ को राई बना, जैसे कि कुछ था ही नहीं। इसलिए तो आठ शक्तियों के पिक्चर में समेटने की शक्ति में क्या दिखाते, बोरी बिस्तरा, पेटी और बिस्तरा बंद हुआ दिखाते, यानी हमको एवर रेडी रहना है। समस्या रूपी पेटी, संकल्प रूपी बिस्तरा, दोनों तैयार बंद करके जब चाहे इशारा मिले तो हम जा सके। आपको पता है अभी दो विजल बच चुका है घर जाने का, पता है आपको, अभी तीसरा विजल बाकी है, उसके बाद तो कोई रोकेगा नहीं। कहते ना, समय किसी के लिए रुकेगा नहीं। एक विजल बजा जब मम्मा ने शरीर छोड़ा, ब्राह्मण परिवार को इशारा मिला, और दूसरा जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए। अभी तीसरा कौन सा बजेगा, फाइनल घर जाने का, तो फिर किसी के लिए कोई रुकेगा नहीं। इसलिए मम्मा का कहना था, हर श्वास को अंतिम श्वास समझो, हर घड़ी अंतिम घड़ी है, जो कुछ करना है अभी कर लो। साकार बाबा का भी स्लोगन था, जो कल करना है आज करो, जो आज करना है अभी करो, अभी नहीं तो कभी नहीं। कभी पोस्टपोन नहीं करना, क्या पता बीच में ही हमारा श्वास छूट जाए। तो इसलिए घर जाने का तैयारी, समेटने की शक्ति चाहिए। सब कुछ समेटा हुआ, आई एम रेडी, मैं तो तीसरा विजिल के लिए इंतजार कर रहा हूं, नहीं तो हम फर्स्ट ट्रेन मिस कर देंगे, त्रेता युग का ट्रेन पकड़ना पड़ेगा। आपको पसंद है त्रेता युग का ट्रेन? तो इसलिए अलर्ट, एक्टिव, ऑलराउंडर रहो। सब समेटना चालू करो, लाइफ को सिंपल बनाओ। शरीर के लिए कितना चाहिए खाने के लिए? 2 रोटी चाहिए, 2 जोड़ी कपड़ा चाहिए। चाहिए चाहिए, मेरे को चाहिए, ये हमारा जीवन को खराब कर देता है। इसलिए बाबा कहते ना, इच्छा स्वच्छता को खत्म कर देता है, सोचता बना देता है। तो आप समेटना चालू करो तो लोगों को लगे कि अभी टाइम है वापस जाने का। जैसे देखो, स्कूल में बच्चे जाते हैं ना, जब स्कूल पूरा हो जाता है, बेल बजती है, शाम को बच्चे क्या करते? बैग में किताब सब कुछ डाल के तैयार हो जाते हैं, बेल बजा तो भागते हैं माँ बाप लेने आए। तो बाबा भी तो अभी लेने आया है ना, तो हमको एवर रेडी रहना है। तो हम बाबा के साथ कैसे जाना है घर, साथी या बाराती? हाथ उठाओ, कौन साथी हो करके जाना चाहते? वाह, तो तैयार है, हाथ और साथ पकड़ा है। हाँ, कोई कोई बहुत होशियार होते हैं, हाथ बाबा का पकड़ते और साथ औरों का रखते, ये नहीं चलेगा बाबा के पास। बाबा का हाथ और साथ, फिर बाबा के साथ साथ चलेंगे। तो दूसरी तैयारी क्या चाहिए? समेटने की शक्ति। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट, हम आत्मा जब परंधाम से आए तो सतोप्रदान अवस्था में आए, पवित्र आत्मा नीचे उतरे। अभी हमारा हालत क्या हो गया है? तमो प्रदान अपवित्र। तो इसलिए हमको फिर से अपने कर्मों की हिसाब किताब सब कुछ तो यहां ही करना है। कोई भी ऐसा कर्मों का हिसाब रह न जावे जो धर्मराजपुरी में हमको रुकना पड़े। तो ये बहुत अटेंशन चाहिए हम सबको घर जाने के लिए, और नया खाता पापों का नहीं बनाना है। जो बनी हुई खाता है 63 जन्मों का, उसको ज्वालामुखी योग से भस्म करना है, ऑर्डिनरी योग से नहीं। तो इसलिए हमको प्यूरिटी और रिमेम्ब्रेंस, ये दोनों के तरफ बहुत अटेंशन चाहिए। जितना ज्यादा आपके अंदर पवित्रता की शक्ति, उतना आपका याद शक्तिशाली, और जितनी आपकी याद शक्तिशाली उतना पिछले जन्मों का पाप भस्म। और कल परसों भी बाबा ने मुरली में कहा, इस जन्म में अगर कोई पाप किया है बचपन से, 3-4 साल से तो याद रहता है ना, तो वो आप बाबा को लिख करके दे दो, बाबा 50% माफ कर देगा उसके लिए, बाकी 50% तो चुक तो हमको करना ही है। तो मतलब तीसरी तैयारी क्या चाहिए? हमको पवित्रता की शक्ति, सतोप्रदान अवस्था को प्राप्त करना है। उसके लिए कर्मों का हिसाब किताब, जो कुछ है उसको चुकतू करना है योग बल से, नहीं तो हमको सजाओं से चुकतू करना पड़ेगा। और चौथी बात कौन सी चाहिए रिटर्न जर्नी के लिए? आप जब परंधाम में थे, वहां पर क्या अनुभव था? स्वीट साइलेंस, एकदम शांत थे, अति शांति का अनुभव। तो अभी हम टॉकी वर्ल्ड में आ गए, वो शांति को भूल गए। तो अभी फिर से हमको शांति धाम जाना है। हमको वाया सूक्ष्म वतन में होते हुए शांति धाम जाना है। सूक्ष्म वतन में भी कोई आवास नहीं, शांति धाम तो है ही शांति धाम। तो इसलिए अभी हमको बहुत 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 शांति की शक्ति को जमा करना है। साइलेंस पावर हमको बहुत जमा करना है। जितना साइलेंस पावर हमारे पास होगा उतना ज्यादा समय हम यहां रहते हुए भी शांति धाम के निवासी होकर के रहने का अनुभव हम कर सकते हैं। जब हम आए ना घर से सीधा आ गए स्थूल वतन में, पर वापस जाते समय वया सूक्ष्म वतन ही जाना पड़ेगा, तो वहां भी आवास नहीं है। इसलिए बार बार बाबा याद दिलाते हैं, आवास से परे रहने की स्थिति ज्यादा से ज्यादा अनुभव करो, ताकि हम परंदा में जब रहते हैं ना, हमको पता नहीं है हम परंदा में हैं, वो अनुभव भी हमको यहाँ करना है। तो ये चौथी बात, हमको विशेष घर जाने के लिए शांति की शक्ति को, कल भी बाबा ने मुरली में कितना सुंदर बताया, साइंस का शक्ति और साइलेंस की शक्ति में कितना अंतर है। तो हम जितना हो सके आवाज में कम आवे, शांति की भाषा, इशारों की भाषा, नयनों की भाषा, फीलिंग्स की भाषा से बात करें, भावना की भाषा से, तो हमारा टाइम भी बच जाएगा और शक्ति भी हमारा इकट्ठा हो जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते ना कि शांति की शक्ति को जमा करो, इससे कई फायदे हैं। हम मनसा सेवा भी कर सकते हैं, सारी दुनिया को सकाश भी दे सकते हैं। तो इसलिए हम अभी घर जाने का टाइम आ गया है, लोगों को कैसा पता चले, कैसे पता चले? तो हमारी धारणा से, जितना हमारे अंदर शांति देखेंगे, हमारे से उनको शांति का अनुभव होगा, तो उनके अंदर ये प्रेरणा मिलेगी। तो हमको जास्ती में जास्ती आवास से परे रहना है, जरूरत के लिए आवास में आना है। मैं तो बहुत एनकरेज करती हूँ भाई बहनों को, मोबाइल का जो यूज है ना, कम से कम यहाँ से जाने के बाद एक हफ्ते में एक बार मोबाइल बंद। आजकल मोबाइल में बहुत आवाज जाता है, इसको हम कहते हैं डिजिटल डिटॉक्स। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब क्या होता है कि एक दिन डिटॉक्सिफिकेशन, जैसे पेट को साफ करना है तो उपवास करते हैं ना लोग, एक दिन फास्टिंग करते। तो आप अपने मोबाइल को फास्टिंग कराओ 24 आवर्स, आप देखो उसी दिन आपका याद का चार्ट क्या होगा, आपकी धारणा कैसे होंगी, आपकी स्थिति कैसा होगा। तो आप में से कौन कौन करेंगे? एक हफ्ते में एक बार नो फोन। बाबा ने तो बता दिया है ना कि आगे चल करके ये टेलीफोन कुछ नहीं काम करेगा, ईमेल फीमेल कोई नहीं काम करेगा। बाबा की टचिंग ही काम करेंगे। तो इसलिए हमको शांति की दुनिया में जाना है, हम शांति दूत हैं, मुख से नहीं बोलना है, परंतु हमारे चेहरे से, चलन से दूसरों को मालूम पड़े। तो ये बहुत बहुत जरूरी है। और लास्ट बात, पांचवी तैयारी क्या करना है, इच्छा मात्रम अविद्या। अभी तक भी ब्राह्मणों में इच्छाएं बहुत निकलती है, तत्वों की बनी हुई चीजों के तरफ आकर्षण अभी तक है, देखो रामायण में बताते हैं ना, सीता राम से क्यों अलग हुई, सोने की हिरण से आकर्षित हो गए। तो अभी भी बाबा से इतना प्राप्ति होने के बाद भी वैराग्य की कमी के कारण, त्याग की कमी के कारण, स्थूल पदार्थ पांच चीजों की बनी हुई हमारी स्थिति को नीचे उतार देता है। तो इसलिए हमको चाहिए संपूर्ण वैराग्य। वैराग्य माना राग नहीं, राग नहीं, वैराग्य। पैशन नो, नो पैशन। मुझे को ये चाहिए। कोई कोई बहुत रॉयल होते हैं, बहुत हुशार, बेंजी मेरे को कोई इच्छा नहीं है, ये अच्छा लगता है। ये क्या है? रॉयल लोभ है ना। जो चीज अच्छी लगेंगे तो आपको अंत में वो ही याद आएगा। अंतकाल जो स्त्री सिमरे डैश डैश डैश। तो इसलिए हमको ऐसा कोई भी वस्तु की तरफ आकर्षण हो, तत्वों के तरफ बनी हुई डिपेंडेंस है, आधार लेकर के हम चल रहे हैं, अधीन होकर के चल रहे हैं, उसको हम निकाल देवे। जितना हमारे अंदर संपूर्ण त्याग, उतना ही हमारे अंदर वैराग्य। वैराग्य और त्याग का संबंध है। मैं कई बार बाबा के बच्चों से पूछती हूँ, कौन सी बात पहले आती है, वैराग्य पहले चाहिए या त्याग? अगर आपने वैराग्य के आधार से त्याग किया है वो परमानेंट रहेगा। अगर आपने बिना वैराग्य के त्याग किया है तो फिर वो आपको खींचेगा। तो इसलिए हमको घर जाना है तो हमको ये चिंता नहीं, लगन लगी रहे कि बस हमारा पांव इस पृथ्वी से, शरीर रूपी पृथ्वी से उठ जाए। तो हम जिस प्रकार से जीवन बिता रहे हैं ना, तो लोगों को लगे अभी घर जाने का टाइम आ गया। जैसे आप नाटक में कहां जाते हो ना, जब नाटक पूरा होता है, लास्ट सीन होता है, तो कैसे मालूम लोगों को? सब तैयारी करना चालू कर देते हैं, क्योंकि देर आर सम साइंस। सभी एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं, फाइनल कमेंट्स देते हैं, फिर पर्दा गिर जाता है। तो अभी हम ऐसे पर स्थिति पर है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, बाबा ने इशारा दिया है ना। तो इसलिए हम एवर रेडी रहे, अचानक की परीक्षा में एवर रेडी। ऐसा कोई पश्चाताप ना हो, मेरे को ये करना था, मेरे को ये काम था, ये मैंने नहीं किया, तो फिर हमारा पुरुषार्थ सारा खत्म हो जाएगा। तो तीव्र पुरुषार्थी यानी डबल तीव्र पुरुषार्थी उसको ही कहा जाता है जो हर बात में निरंतर भी हो और बैलेंस भी हो, स्व सेवा और दूसरों की सेवा का बैलेंस, उसको कहते हैं डबल तीव्र पुरुषार्थी। आपने सुना है ना, डबल विदेशियों को बाबा बार बार ये टाइटल देता है डबल तीव्र पुरुषार्थी, क्योंकि उनका पुरुषार्थ ऐसे ही है। लौकिक धंधा भी करते हैं, सेंटर भी संभालते हैं और अपनी स्व उन्नति की तरफ भी बहुत अटेंशन देते, स्व सेवा और दूसरों की सेवा, दोनों का बैलेंस निरंतर रखते चले। तीव्र पुरुषार्थी का ट्रेड मार्क ही होता है निरंतर, अंतर नहीं। और बाबा को भी कौन सा शब्द अच्छा लगता है? सदा। बाबा ने बता दिया है, सदा वाले गोल्डन एज में जाएंगे, कभी कभी वाले कहाँ जाएंगे? त्रेता युग में जाएंगे। तो इसलिए हम सबका लक्ष्य है कि हमको संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है। पहले संपन्न, फिर संपूर्ण, उसके पहले समान, समान संपन्न और संपूर्ण। तो फिर हम तैयार है, तो कभी भी हम जाएंगे तो कोई बात हमको नहीं कहेगा। तो ये पांच बातें आप अपने किताब में भी लिखो, भले आपकी यहाँ यहाँ पर अपने मस्तक में भी लिख दो, याद रहे। और रोज चार्ट में ये पांच बातें देखो, पांच बातें रिटर्न देने के लिए, पांच बातें रिटर्न होने के लिए। तो आज की मुरली प्रैक्टिकली आपने धारण किया तो आपको भी खुशी होगी और आपको पुरुषार्थ को देख करके बाबा को भी बहुत खुशी होगी। ठीक है, आप सब ऐसा करेंगे ना, बाबा को रिटर्न देंगे ना। और रिटर्न जर्नी के लिए ऐसा तो नहीं बाबा थोड़ा रुको अभी हम तैयार नहीं हैं, अभी अभी तो हम ज्ञान में आए हैं, रुकेगा बाबा? समय ही नहीं रुकता है तो बाबा क्यों रुकेगा? इसलिए हमको समय के साथ साथ चलना है, तभी हम बाबा के साथ साथ अंत में साथी होकर के घर जा सकते हैं। ठीक है, सब संतुष्ट हो? सब संतुष्ट, एकदम संतुष्ट होकर के जा रहे हैं अपने अपने सेवा केंद्र पर। तो आपकी संतुष्टता का लहर सारे शहर में फैलना चाहिए, सारे देश में। संतुष्टता ही संपन्नता की निशानी है। जो आत्मा संतुष्ट है वो ही संपन्न है, जो संपन्न है वो समान है, जो समान है वो संपूर्ण। तो बाप समान बन ही जाएंगे। ऐसे हम आप सबके लिए ये शुभ भावना रखते हैं, यही शुभ आशा रखते हैं कि हर एक तीव्र पुरुषार्थी बन करके एक बाप दूसरा न कोई, ये मंत्र को पक्का रखते हुए आगे से आगे बढ़ते रहे और अपनी मंजिल समय के पहले पहुंच जाए, ताकि हम बाबा से मुलाकात कर सके। ओके, ओम शांति।
चले साथ घर को, घड़ी ऐसी आए, यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा,
यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को, घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की